समयदान ही युग धर्म क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला 20। सार संक्षेप। दान अर्थात देना, ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को जागृत विकसित करना और उससे औरों को भी लाभ पहुंचाना, यही है पुण्य। परमार्थ सेवा, स्वर्गीय परिस्थितियां इसी आधार पर बनती हैं। लेना बटुरना, दूसरों के अधिकार का अपहरण करना, यही पाप है, इसी की प्रतिक्रिया का अलंकारिक प्रतिपादन है नर्क। यहां समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपनाकर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं कि उन्होंने संसार में जो पाया उसे प्रतिफल स्वरूप अनेक गुना करके देने का व्रत निभाया। धनदान तो एक प्रतीक मात्र है, उसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है, प्रभाव विपरीत भी पड़ सकता है। वास्तविक दान प्रतिभा का है, धन साधन उसी से उपजते हैं। प्रतिभादान समय दान से ही संभव है, यह ईश्वर प्रदत्त संपदा सबके पास समान रूप से विद्यमान है। वस्तुतः समयदान तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई में आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। यह असाधारण समय है, तत्काल निर्णय और तीव्र क्रियाशीलता उसी प्रकार आवश्यक है जैसी कि आग बुझाने या ट्रेन छूटने के समय होते हैं। हनुमान, बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद आदि ने समय आने पर शीघ्र निर्णय न लिए होते तो ये उस गौरव से वंचित ही रह जाते जो उन्हें प्राप्त हो गया। महात्मा ईसा ने ठीक ही कहा है, शीघ्र कार्य यदि बाएं हाथ की पकड़ में आता है तो भी तुरंत पकड़ो। बाएं से दाएं का संतुलन बनाने जितने थोड़े से समय में ही कहीं शैतान बहका न ले। सिंगल कोट, सिंगल कोट। अनुक्रमणिका 1, दान और उसका औचित्य 2, अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं 3, अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए 4, समयदान महादान 5, दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे 6, प्रभावोत्पादक समर्थता 7, प्रामाणिकता और प्रखरता ही सर्वत्र अभिष्टेट, समय का एक बड़ा अंश नवसृजन में लगे 9, प्राणवान प्रतिभाएं यह करेंगी 10, अग्रदूत बने, अवसर न चुकें। दान और उसका औचित्य। दान पुण्य शब्द एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं और इनके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म भाषा में उसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बताई जाती है और बोलचाल की भाषा में उसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता प्रदाता तक बताया जाता है। दान अर्थात देना, यही पुण्य है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण, यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में अवगति दुर्गति स्तर की होती है। नरक इसी का अलंकारिक प्रतिपादन है। दोनों में से अपनी गतिविधियां किस पक्ष के साथ विनियोजित करना है, यह मनुष्य की अपनी इच्छाओं की बात है। परिस्थितियां कई बार इस चयन के विपरीत दबाव भी डालती देखी गई हैं, पर अंततः होता वही है जिस पर इच्छा शक्ति का संकल्प बनकर केंद्रीभूत होती है। हरिश्चंद्र, कर्ण, बलि, दधीची, भामाशाह आदि की कथाएं इसी तथ्य का प्रतिपादन करती हैं। स्वर्ग जाने वाले और मुक्ति पाने वालों को इससे बढ़कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। भक्ति का एक ही स्वरूप है अपनी इच्छा आकांक्षाओं को आराध्य के साथ घुला मिला देना। ईंधन इसी आधार पर तुच्छ होते हुए भी दावानल बनकर जाज्वल्यमान होता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वह समर्पणकर्ता के हाथों अपने को सौंप देता है और उसके इशारे पर नाचता है। मीरा के साथ सहनृत्य करना, सूर की लकुटी पकड़कर सेवक की तरह कार्यरत रहना, ऐसे ही उदाहरण हैं। सुदामा, चैतन्य, हनुमान, अर्जुन आदि की गणना ऐसे ही भक्तों में होती है जिन्होंने भगवान के खेत में अपना सर्वस्व उदारतापूर्वक बोया और बीज की तुलना में 4 गुना अन्न भंडार अपने कोठे में भरा संजोया। श्रद्धास्पद श्रेष्ठ जनों को देव मानव कहा जाता है। उनके अनुदानों के प्रति सृष्टि का कण कण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। यहाँ समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपना कर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं कि उन्होंने संसार में जो पाया उसकी तुलना में उसके प्रतिफल स्वरूप असंख्य गुना करने का होते रहने का व्रत निभाया। यदि कृपणता उन्हें घेरे रही होती तो प्रेत पिशाचों की पंक्ति में ही गिने जाने योग्य बने रहते, भले ही उनकी संचित संपदा कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न रही हो। सच्चाइयां कितनी ही कष्ट साध्य क्यों न हो, अपने स्थान पर अकेले ही समुद्र के बीच अवस्थित प्रकाश स्तंभ की तरह अविचल ही बनी रहती हैं। ऐसी ही सच्चाइयों में से एक यह भी है कि जो जितना देता है वह उसी अनुपात में पाता है। मस्खरी करने वालों को बदले में उपहास ही हाथ लगता है। यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि देने के नाम पर अंगूठा दिखाने और लेने के लिए कंधे पर बड़ा थैला लादे फिरने वाले मात्र निराशा, थकान और खींच ही लेकर लौटते हैं। भले ही उन्होंने मुफ्त में तुर्त फुर्त बहुत कुछ पाने की शेख चिल्ली जैसा सपना ही क्यों न संजो रखा हो। संसार में व्यवहारिकता का ही प्रचलन है। यहाँ इस बाजार में एक से एक बढ़िया वस्तुएं भरी और आकर्षक ढंग से सजी पड़ी हैं, पर उसमें एक को भी मुफ्त में पा सकना कठिन है। जो ऐसी चेष्टा करते हैं वे चोरों की तरह पकड़े जाते हैं या फिर भिखारियों की तरह हर द्वार से दुत्कारे जाते हैं। इस आधार पर यदि किसी ने कभी कुछ पाया भी होगा तो वह उसकी आदत और व्यक्तित्व का स्तर गिरा देने के कारण महंगा भी बहुत पड़ा होगा। अनुदान का प्रतिदान ही यहाँ का शाश्वत नियम है। दुनिया का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं, पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवचनकों, पाखंडियों और अनाचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति तो लुटेरे ही अपनाते हैं, उनकी भी घात सदा नहीं लगती। मन के मोदक न बनाने हों, दिवा स्वप्न देखने न हो, बिना पंखों के आकाश नापने की योजना न बनानी हो और यथार्थ का अवलंबन करते हुए ठोस उपलब्धियां हस्तगत कर लेने की अभिलाषा हो तो वही करना चाहिए जो अब तक के उदारचेता या महामानव अपनाते और उससे प्रिय तथा श्रेय का दोहरा लाभ उठाते रहे हैं। संत, सुधारक, शहीद और सेवाभावी अपनी उदारता के बल पर ही मनुष्यों से लेकर देवताओं तक के वरदान हस्तगत करते रहे हैं। तपश्चर्या अपनाए बिना किसी विभूतियों और सिद्धियों का वरदान हस्तगत हुआ है। पूंजी क्या इसी आधार पर जमा होती है कि लिया अधिक और दिया कम जाए। संसार से हम आए दिन कितना लेते हैं, इसका बही खाता रखने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। व्यवसाय के लिए जो पूंजी कहीं से ली जाती है उसे बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। यह नियम शाश्वत होते हुए भी हर कोई अपने को इस व्यवस्था से पूरी तरह छूट दिलाना चाहता है। यहाँ हर किसी को हर किसी से कुछ न कुछ लेना ही है। देने के नाम पर अंगूठा दिखा देने या दांत निपोर देने के अतिरिक्त और कुछ जैसे सूझ ही नहीं पड़ता। तो क्या सचमुच ही ऐसा है कि कुछ महत्वपूर्ण पाने के लिए वैसा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बिना काम नहीं चल सकता? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दसों दिशाओं से गूंजते सुना जा सकता है कि दो और पाओ, बोओ और काटो, बांटो और झोली को कभी खाली होते न पाओ। इस शाश्वत सत्य को कृपणता अनादिकाल से झुठलाती चली आ रही है, फिर भी यथार्थता को अपने स्थान से एक इंच भी हटाया नहीं जा सका है। प्रश्न फिर घूमकर वहीं आ जाता है कि जब अधिकांश लोग अभावों से ग्रसित हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहकर दिन काटते हैं, तब दान पुण्य की परंपरा चरितार्थ कैसे हो। इस प्रश्न में बालकों जैसी भोलेपन की झलक झांकी मिलती है। समझा जाता है कि धनदान ही एकमात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दीख पड़ता है। चर्चा और प्रशंसा उसी की होती है। प्रचलन को देखते हुए ऐसी मान्यता बन जाना कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। जो रिश्वत की उपहार की करामात जानते हैं, उनका दावा है कि बेचारा मनुष्य तो चीज ही क्या है। देवताओं तक को भेंट उपहार के स्तवन, मनुहार के सहारे अपने पक्ष में बनाया जा सकता है। भले ही वह अनुग्रह कितना ही अनैतिक व अवांछनीय क्यों न हो, इस मान्यता वालों का एक बड़ा समुदाय है। ऐसी दशा में यदि दान शब्द का अर्थ धनदान के साथ जुड़ गया हो और फिर मनोविनोद तक के लिए किए जाने वाले अपव्यय को भी खर्च की मद में लिखे जाने के कारण दान समझा जाने लगा हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। पूजा पाठ में एक विधि पशुवध की भी सम्मिलित थी और उसे बलिदान कहा जाता था। हरिजनों को कभी जूठन दान दिया जाता था, जिसे अब उन्होंने अपमान माना है और लेना अस्वीकार कर दिया है। रोगियों के उतरे हुए कपड़े कभी जाति विशेष के लोग खुशी खुशी ले जाते थे, पर अब इस उतरन दान को स्वाभिमानी नितांत निर्धन भी स्वीकार नहीं करते। विवाह शादी की धूमधाम में उलीचा गया धन कन्यादान, वागदान आदि नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दान शब्द का दुरुपयोग जहां तहां भ्रांतियुक्त रूपों में देखा जा सकता है। संग्रहित धन को आयकर से बचत हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था को दान देकर दोहरा लाभ उठा लिया जाता है। टैक्स की बचत और दानवीरों की श्रेणी में अपनी गिनती। चंदा मांगने वालों का दबाव, कुटुंबी संबंधियों पर अनुग्रह, तीर्थयात्रा के नाम पर पर्यटन पिकनिक भी दान है। मनोरंजन के लिए उद्यान, पार्क, स्विमिंग पूल इत्यादि बना देना भी जनहित कहकर मन को समझाया जा सकता है। रिश्वत में दी गई राशि भी उदारता पूर्वक दी जाने के कारण दान ही है। यहाँ तक कि नशा पीने से पहले उसे शंकर भगवान को अर्पण कर दिए जाने पर वह भी भोग प्रसाद बन जाता है। यश के लिए कहीं पैसा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना और उस इमेज का लाभ किसी दूसरी प्रकार से भुना लेना भी दान की श्रेणी में गिना जा सकता है। इस प्रकार दान शब्द व्यवहार में जिस ढंग से प्रयुक्त होता है उसे आदान प्रदान कहा जाए तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। दान को पुण्य उसी आधार पर कहा जा सकता है कि उसको प्रामाणिक माध्यमों से उच्च स्तरीय सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसके विपरीत इस मद में खर्ची गई राशि यदि आलस्य, प्रमाद, पाखंड, प्रवंचना, दुर्व्यसन, अंधविश्वासों के विस्तार में निमित्त कारण बनती है तो उससे ठीक उल्टा प्रतिफल भी हो सकता है। परिणाम और प्रयोग के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता ही पुण्य का आधार बनती है और उसकी प्रतिक्रिया पुण्य के साथ जुड़ने वाले अनेक कल्याणकारक रूपों में सामने आती है। इसके विपरीत यदि उससे दुर्जनों को, दुष्प्रयोजनों का परिपोषण हुआ तो समझना चाहिए कि वह देने की तरह खर्च किए जाने पर भी ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकती है जो अपने तथा दूसरों के लिए नरकवास जैसे अनेकों संकट खड़े करती है। प्रवंचनाओं के अतिरिक्त दान क्षेत्र में और भी अनेकों व्यवधान हैं। मुफ्तखोरी की आदत बढ़ाना किसी के अध पतन का द्वार खोलना है। आपत्तिग्रस्तों को सामाजिक सहायता देकर उन्हें अपने पैरों खड़े होने की स्थिति तक पहुंचा देना एक बात है, किंतु मुफ्तखोरी की आदत डालकर वैसा स्वभाव बना देना एक प्रकार से भले चंगे को अपाहिज बना देने के समान है। ऐसी दशा में यह अति विचारणीय है कि न्यायोपार्जित धन इतनी मात्रा में कहां से पाया जाए जिसे प्रशंसा पाने योग्य स्तर पर दान के नाम पर बिखेरा जा सके। वस्तुतः धनिकों का दान उनके संचित पापों का प्रायश्चित है। फोड़े में भरे मवाद को निचोड़ देने में चीरा लगाने वाले की अपेक्षा उसे निकालने देने वाले की भलाई अधिक है। औचित्य इस बात में है कि हर व्यक्ति औसत नागरिक स्तर का जीवन जिए, सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाए, न्यायोचित पसीने की कमाई पर संतोष करे, चोरी बदमाशी का इस हेतु प्रयोग न करे। यदि अपने खर्च से बच जाता है तो उसे बिना रोके अवांछनीयताओं जैसी अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए खर्च कर दें। सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की व्यवस्था न जुट पाने से ही श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता की पौध सूख रही है। उसे सींचने के लिए जो कुछ बन सकता हो करें। यही सतयुगी परंपरा रही है, यही किया भी जाना चाहिए। अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं। मनुष्य शरीर की संरचना अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक समुन्नत है कि उसे निर्वाहजन्य कोई असुविधा सहन करनी पड़े इसका कोई भी कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। जब सभी जीव जंतु क्रीड़ा कलोल करते हुए जीते हैं, कुदकते फुदकते चहचहाते दिन गुजारते हैं, तो फिर विकसित मनुष्य को ही ऐसी कठिनाइयों से घिरा क्यों पाया जाना चाहिए जिनसे कि वह इन दिनों बुरी तरह ग्रसित देखा जाता है। रोग शोक अभाव क्लेश विद्वेष अशांति के अनेकानेक कारण गर्दन दबोचे रहते हैं। चिंताओं आशंकाओं से दिल धड़कता रहता है। हर कोई अपने अपने ढंग की अनेकानेक समस्याएं गिनाता है और आपत्तिग्रस्तों की तरह अपने को दयनीय परिस्थितियों में फंसा पाता है। इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में हर दृष्टि से सुसंपन्न प्राणी इस तरह दिन गुजारे मानो विपन्नताओं ने सभी ओर से घेर रखा हो। तनिक गंभीरता से विचार करने पर कारण स्पष्ट हो जाता है। वासना तृष्णा और अहंता के निविड़ भव बंधनों ने उसे ऐसी बुरी तरह जकड़ रखा है कि 24 घंटे उन्हीं उलझनों द्वारा कसे गए जाल जंजाल बेतरह त्रास देते रहते हैं। लोभ मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए मनुष्य इतना आकुल व्याकुल बना रहता है कि और अधिक चाहिए कि अतिरिक्त न तो कुछ सोचते बनता है और न ऐसा कुछ समाधान ढूंढने के लिए उत्साह उमंगता है कि मकड़ी की तरह अपने बुने हुए जाल को समेटने और जकड़न से भाग पाने का मार्ग खोजा जा सके। स्वाभाविक आवश्यकताएं स्वल्प हैं, उन्हें कुछ ही घंटों में अपने बलबूते ही पूरा किया जा सकता है। किसी से मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अपना उत्पादन ही इतना अधिक है कि उसे यदि उर्वर भूमि में बोया जा सके तो एक से हजार हजार से लाख का सिलसिला अनवरत रूप से चलता है और प्रसन्नता से लेकर प्रफुल्लता तक का आनंद हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। जीवधारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसे उल्टी बुद्धि से पाला पड़ता है। फलत जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। पतंगे को न जाने क्या लगता है कि जलते दीपक पर झपकता है और उससे कुछ पाना तो दूर, अपने पंख जलाकर बिलखता कल्पता हुआ मरता है। चिड़ियों और मछलियों को बिना परिश्रम का चारा सुहाता है, पर यह नहीं दिखता कि इसके साथ कितना प्राण घातक जाल बना है। बालू को जलाशय समझने वाला हिरण मृगतृष्णा में भटकता प्यास प्यास करता मरता है और नाहक बदनाम होता है। कस्तूरी के हिरण पर न जाने क्या ऊंट चढ़ती है कि नाभि से निकलने वाली गंध को कहीं अन्यत्र खोजना और थक थक कर दम तोड़ता है। कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर मुंह से निकलने वाले रक्त को उसका रस समझकर अपने खून का प्यासा आप बनता है। मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिवादी कहे जाने के कारण अधिक समझदारी का परिचय देगा। देता भी है, किंतु जहां तक लालच बटोरने का प्रश्न है वह उस पागल जैसा आचरण करता है जो कूड़े में से निरर्थक चीजें बीनकर झोली भरता है और फिर उसमें आग लगाकर लपटे उठाने की सफलता पर अट्टहास करता है। अंधी भेड़िया एक के पीछे एक चलती और एक ही खड्ड में गिरकर मरती है। टिड्डियों का समुदाय तो बड़ा होता है, पर जब वह उड़ने योग्य होता है तो किसी भी दिशा में दौड़ पड़ता है। फलत वे सभी किसी रेगिस्तान में झुलसती या समुद्र जैसे जलाशय में डूबकर मरती है। ऐसा ही कुछ मनुष्य भी करने लगे तो हैरत होती है कि बाहरी दुनिया में चकित कर देने वाली करामाते दिखाने वाला मनुष्य अपनी बारी आने पर क्यों इतना मूर्ख बनता है कि खुशी से आत्मघात करने के लिए सास संजोए और रोकने समझाने वाले से ताल ठोक कर लड़ने आए। चतुरता और बुद्धिमत्ता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह है कि जो दुनिया के अनान्य क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त कर दिखाती है। इसके ऊपर नीति अनीति का दबाव प्रायः नहीं के बराबर होता है। जिस प्रकार भी अपना उल्लू सीधा होता है उसी को बहिरंग पक्ष ग्राह्य मानता है और बिना किसी हिचक के कर दिखाने के जमीन आसमान के कुलाबे मिलता है। मनुष्य का अंतरंग पक्ष वह है जिसमें मर्यादा को प्रमुखता मिलती है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की कसौटी पर कसने के उपरांत ही कोई निर्णय किया तथा कदम उठाया जा सकता है। इसमें अपनी तरह दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इस संदर्भ में आत्मा का, परमात्मा का अभिमत भी सुना जाता है। इन दिनों बहिरंग पक्ष को ही प्रमुखता मिल रही है। यदि गौरवर्ण, युवावहर और साज सज्जा आकर्षक हो, यह देखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती कि पर्दे के पीछे एड्स, सिफिलिस, टीवी, कैंसर जैसे रोगों के विषाणु संपर्क में आने वाले पर छूत का आक्रमण करने को तैयार तो नहीं बैठे हैं। चालाक और उद्दंड व्यक्ति हर कहीं रौब गांठते और किसी को भी डराने दबाने में सफल होते हैं। संपन्नों में भी अधिकांश लोगों की संपदा औचित्य के सहारे की कमाई हुई नहीं होती। नेतृत्व स्तर की आदर्शवादी स्पीचें झाड़ने वाले बहुधा रंगे सियार और बगुला भगत पाए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रामाणिकता और प्रखरता को अक्षुण बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने और ऊपर से दूनी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं। उनकी काया नहीं, चरित्र प्रेरणा का स्रोत बनता है और असंख्यों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में सफल होता है। इसलिए महामानवों को ऐसे ही लोग गढ़ते और मानवीय उत्कृष्ट आदर्शवादिता की रक्षा करते हैं। किंतु उन अंगणों को क्या कहा जाए जो चतुरता, विडंबना और ठाट बाट की सज्जा के अतिरिक्त और किसी का लोहा मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। बहुमत इसी विडंबना का होने से लोगों का झुकाव भी उन्हीं की ओर पाया जाता है। इसलिए तथाकथित लोकमत को न तो मान्यता दी जा सकती है और न उसके अनुसरण से मानवीय गरिमा की रक्षा ही होती है। बड़ों का विस्तार देखकर चमत्कृत होने की अपेक्षा औचित्य इसी में है कि महानता का अवलंबन लिया और अभिवंदन किया जाए, भले ही वह दुर्बल या पराजित ही क्यों न रही हो। यहाँ चर्चा बड़ों की नहीं की जा रही है, क्योंकि वे पानी के बबूले की तरह उबलते और तनिक सी उछलकूद दिखाकर अदृश्य के गर्त में समा जाते हैं। यहाँ विवेचन उनका हो रहा है जिन्हें किसी भूखंड या समुद्र में दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ कहते हैं। शेषनाग फन पर धरती को धारण किए है या नहीं, इसमें मतभेद हो सकता है, पर यह बात निर्विवाद है कि मनुष्यता की गरिमा और महिमा मात्र उन आदर्शवादियों के कंधे पर टिकी हुई है जिनसे चिरस्थायी शांति और प्रगति की आशा की जा सकती है। विचारशील और विवेकवान इन्हीं को कहा जा सकता है। चतुर लोग प्रचलित क्रियाकलापों में अपनी विशिष्टता का परिचय देते और जिस तिस प्रकार लाभ अर्जित कर दिखाते हैं, किंतु विवेकवानों को तो वही सोचना एवं कराना पड़ता है जिससे मर्यादाएं निपटी रहें और शालीनता की उमंगें उभरती रहे। ऐसे गौरवशाली मान्यता के धनी लोगों के सामने तीन समस्या प्रमुख रहती हैं। एक यह कि अन्य प्राणियों के लिए सर्वथा दुर्लभ इतना कलात्मक जीवन सृष्टा ने किस प्रयोजन के लिए प्रदान किया तथा उस विशिष्ट अनुदान का अधिकारी समझा। दूसरा यह कि जो आवश्यक साधन एवं वैभव प्राप्त है उसका आज की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। तीसरा यह कि जन्म की तरह मरण निश्चित है, वह कल भी हो सकता है और परसों भी। तब जिस दरबार में हाजिर होना होगा वहां किस प्रकार, किस रूप में अपनी जीवनचर्या का निर्धारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन तीन प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए जो व्यक्ति परीक्षार्थी जैसी तैयारी करता है, जो सही उत्तर देकर ससम्मान उत्तीर्ण होता है, समझा जाना चाहिए कि उसने मनुष्य जीवन के महत्व को समझा और तदनुरूप व्यवहार करके उपलब्धियों को सार्थक कर दिखाया। ऐसे लोग संख्या में भले ही थोड़े हों, पर प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता से संपन्न उन्हें ही कहा जाएगा। जिन्हें इन प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है, जो इस तरह कभी सोचते नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं समझते, फुर्सत नहीं पाते, वे मनुष्य समुदाय के घटक तो हो सकते हैं, पर वे वस्तुतः किसी अन्य लोक के प्राणी ही कहे जा सकते हैं। व्यंग में उन्हें पृथ्वी के यक्ष, गंधर्व, किन्न भी कह सकते हैं। फूहड़ शब्दों में इन्हें बड़े आदमी, चतुरता के धनी, बहेलिए, कलावंत भी कहा जा सकता है। वे अपनी चतुरता के बल पर खोटे सिक्के की तरह दांव लगाते ही चले तो जाते हैं, पर मनुष्यता की हर कसौटी पर अनुपयुक्त ही सिद्ध होते हैं। खरे सोने वे हैं जो कसौटियों पर कसे जाने और आदर्शों की आग में तपने पर भी अपनी गरिमा अक्षुय बनाए रहते हैं। वही तो पवन की तरह प्राण बांटते हैं, बादलों की तरह बरसते और सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशवान गतिशील रहकर हर कहीं अभाव और ऊष्मा बिखेरते हैं। इन्हीं के लिए उन तीन प्रश्नों का उत्तर सही रूप दे सकना संभव होता है कि जीवन किस लिए मिला है, उसके साथ किन कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अनुबंध जुड़ा, और सृष्टा के दरबार में पहुंचने पर गर्दन ऊंची उठाकर अपने क्रियाकलापों का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत करते बन पड़ा। पेट प्रजनन के लिए तो कृमि कीटक भी जी लेते हैं, दोनों प्रयोजनों को वे अधिक निश्चिंतता पूर्वक पूरा करा लेते हैं। फिर मनुष्य जीवन जैसी सुर दुर्लभ, सृष्टा की अनुपम कलाकृति का भी निष्कर्ष इतना ही निकला, तो समझना चाहिए कि दुर्भाग्य की चरम सीमा हो चली। मनुष्य का अगला स्तर देवता है। उसकी प्रगति के लिए उपयुक्त पद यही है। इसके विपरीत 84 लाख के कुचक्र में भ्रमण करना और नारकीय दुर्गति में पित्ते पिस्ते रह जाना ही शेष रह जाता है। अच्छा हो उल्टा चलने और औंधे मुंह गिरने की नीति नहीं अपनाई जाए। साधारण समय में साधारण रीति से भी सोचा और धीमा कदम उठाया जा सकता है, किंतु कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जिनमें निर्णय तुरंत करने और कदम अविलंब उठाने पड़ते हैं। पड़ोस में अग्निकांड भड़क रहा हो और उसकी चिनगारियां अपने छप्पर तक पहुंच रही हों, तो ऊँगते नहीं रहा जा सकता। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, गार्ड की सीटी बजने वाली हो, तो चढ़कर अपनी जगह पकड़ने में फुर्ती ही दिखानी पड़ती है। परीक्षा की अवधि में पूरी एकाग्रता से पर्चे हल करने पड़ते हैं। उन क्षणों को कल्पनाओं में निरत रहना भारी घाटे का सौदा होता है। दुर्घटना घटित होने पर आहत का उपचार तुरंत करना पड़ता है, अन्यथा रक्त स्राव न रुकने पर प्राण संकट का खतरा स्पष्ट है। इन दिनों ऐसा समय है जिसमें एक पैर उत्थान की और दूसरा पतन की नाव पर रखा है। दोनों में से एक का चयन करने में विलंब नहीं किया जा सकता, अन्यथा विपरीत दिशा में जाने वाली नौकाएं नासमझ वाले मुसाफिर का कबाड़ा ही बनाकर रख देंगी। गया समय फिर वापस लौटता कहाँ है? हनुमान ने, विभीषण ने, अर्जुन ने, बुद्ध ने अपने निर्णय तत्काल कर लिए थे। यदि वे बात को फिर कभी के लिए टालते रहते तो उस सुयोग से वंचित ही रह जाते जो उन्हें समय को पहचान लेने के कारण सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सका। फसल के बोने और काटने की कुछ दिन की अवधि निर्धारित रहती है। जो उसे गंवा देते हैं उनके हाथ से फसल की आधी कमाई निकल जाती है। प्रमाद यूं सदा ही अतिशय घाटे का निमित्त कारण है, पर कई बार अलभ्य अवसर सामने होता है और वह अवसर अन्यमनस्कता तनिक भी सहन नहीं करता। घुड़दौड़ में अच्छे घोड़ा वाला भी यदि अस्त व्यस्त गति का हो तो उसके हाथ पर राजा के अतिरिक्त और क्या लगने वाला है। नारद का परामर्श मानने में जिन्होंने आनाकानी नहीं की वे ध्रुव, प्रहलाद, उमा, सावित्री की तरह अजर अमर हो गए। अन्यथा मूर्मती बहुमूल्य संकेतों और संदेशों को भी इस कान सुनते और उस कान निकालते रहते हैं। ज्ञान की सार्थकता कर्म के साथ जुड़ने पर ही बन पड़ती है, इस प्रयोजन को चरितार्थ करने का ठीक यही समय है। अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए। समय साधारण भी होते हैं और असाधारण भी। साधारण समय को जिस तिस प्रकार काट लेना भी बहुत भारी नहीं पड़ता, पर जब निर्णायक घड़ियां हों तो फैसला करने में अचकचाते रहना, असमंजस में अवसर गंवा देना बहुत भारी पड़ता है। समर्थ गुरु रामदास को विवाह मंडप में जब सावधान कहा गया तो उन्होंने उस संकेत को कप्तान के अनुशासन की तरह शिरोधार्य किया। बाहरी संकेत को अंतरात्मा ने गंभीरता पूर्वक अपना लिया तो वे वह बन गए जिसका महत्व राष्ट्र उद्धारक के रूप में अनादिकाल तक स्मरण किया जाता रहेगा। शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा आदि ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित करने में वर्षों का समय नहीं गंवाया था। ईसा सच ही कहते थे कि महानता अपनाने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसी से पकड़ लें। ऐसा न हो कि दाहिना हाथ संभालने की थोड़ी सी अवधि में ही शैतान बहका ले और जो सुयोग बन रहा था वह सदा के लिए अपनी राह चला जाए। प्रसवकाल की लापरवाही जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण हरण कर सकती है। मोटर दुर्घटनाओं में भी ड्राइवर की तनिक सी असावधानी गजब ढा देती है। निशाना साधने वाले का हाथ जरा सा हिल जाए तो तीर कहीं से कहीं चला जाएगा। मनुष्य का जीवन ऐसा ही अलभ्य अवसर है, यह किसके पास कितने दिन ठहरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन जाने आज का सोया व्यक्ति कल उठने से पूर्व ही सदा सर्वदा के लिए आंखें बंद कर ले। जब शंकराचार्य, विवेकानंद, रामतीर्थ जैसे महामानव भरी जवानी में उठ गए तो कौन इस बात को विश्वासपूर्वक कह सकता है कि किसे कितने दिन जीने का अवसर मिल ही जाएगा। ऐसे अलभ्य अवसर का निर्णायक निर्धारण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। यह युग संधि की बेला है। 20वीं सदी विदा हो रही है और 21वीं सदी का प्रभाव पूर्व की तरह अरुणोदय हो रहा है। युग संधि का अवसर असाधारण है। ऐसे ही अवसर पर मेघ गहराते और पेड़ पौधे तक बसंती परिधान उड़कर रहते हैं। जन्म का आरंभ और मरण का समापन भी कुछ विचित्र प्रकार का माहौल बनाते और नई तरह के संवेदन उभारते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ होना है। जीवंतों को कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ रहे हैं जो उनकी गरिमा के अनुरूप हों। इन दिनों मनुष्य जाति का भाग्य नए कागज पर नई स्याही से नए सिरे से लिखा जा रहा है। इस उथल पुथल में हमारा स्थान कहाँ हो यह चयन करने का ठीक यही अवसर है। पीछे तो जहां जिसका जिस प्रकार नियोजन होगा उसे उसी जगह अपने को विवश बादल की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। रेल में चलते समय जो जहां बैठा लेता है उसे यात्रा के अंत तक वहीं पर जमा रहने का अवसर मिल जाता है। रंगमंच पर किस पात्र को क्या भूमिका निभानी है इसका निश्चय पहले ही हो जाना है। पर्दा खुलने पर तो अभिनय की निर्धारित प्रक्रिया ही दोहरा भर लेने का उपक्रम शेष रह जाता है। युग संधि की इस वेला में न्यायाधीश के फैसले की तरह हर जीवंत को यह निश्चय करना है कि उसकी अगली भूमिका किस स्तर की हो। विवाह शादी के धूमधाम वाले दिनों में घर के हर छोटे बड़े का उनकी क्षमता के अनुरूप छोटा बड़ा योगदान होता है। चुप पड़े रहना और सहयोग न देना मात्र उन्हीं से बन पड़ता है जिन्हें रुगणता अथवा अपंगता ने निष्क्रिय रहने के लिए विवश कर दिया है। शेष को तो उत्सव के साथ जुड़ी हुई उमंगें ही कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं, जिससे आयोजन में किसी न किसी प्रकार की सहायता मिले। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी ही सक्रियता जगती है। घर के किसी उपयोगी साथी के मरने पर परिवार भर को विलाप करते देखा जाता है। सभी शमशान को चलते हैं। परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। इससे इनकार करने वालों पर दर्शकों तक का तिरस्कार बरसता है। इन परिवर्तनों के क्षणों में दिवाली की तरह सभी घरों से कूड़ा करकट बुहारा जाएगा। लिपाई पुताई और रंग रोगन करके घर आंगन सजाया जाएगा, भले ही स्थान और साधन कितने ही सीमित क्यों न हो। होली के दिनों में बीन बीन कर झंखारों का कचरा इकट्ठा किया और जलाया जाता है, साथ ही सब लोग गले मिलते और प्रसन्नता के अभिवादन भी करते हैं। होली दिवाली पर हलचल रहित घर कदाचित ही कहीं देखे जाते हैं। खंडहरों तक में पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। इन दिनों इतिहास का अभिनव अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हम में से हर किसी का ऐसा स्थान और योगदान होना चाहिए जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक होती रहे, जिसकी स्मृति हर किसी को प्रेरणा दे सके कि सोचना किस तरह चाहिए और चलना किस दिशा में, किस मार्ग पर चाहिए। दीपक छोटा होते हुए भी अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रकाश प्रस्तुत करने और यथार्थता से अवगत कराने से घनघोर अंधेरे को भी परास्त करने में सफल होता है, भले ही इस प्रयास में उसे अपने तेल बत्ती जैसे सीमित साधनों को भी दांव पर लगाना पड़े। क्या हमारा मूल्य दीपक से भी कम है? बात ऐसी तनिक भी नहीं, मात्र कृपणता का तूफान ही है जो श्रेय पथ पर चलने देने में पग पग पर अड़चन उत्पन्न करता है। लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्या हम उसे स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई कृपणता को घटा या हटा नहीं सकते, जिसके कारण जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों को आत्मा और लोक भर्त्सना सहते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी तो हाथ नहीं आता। आदान प्रदान संसार का शाश्वत नियम है। नेकी का बदला कृतज्ञता के रूप में चुकाया जाता है, पर उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाता है जो आड़े समय में काम आते हैं। शबरी गिलहरी के छोटे छोटे अनुदान भी अजर अमर हो गए क्योंकि उनमें भगवान का गहरा संपुट लगा हुआ था। नारद इसलिए देवर्षि बने और भगवान के दरबार में कभी भी बिना रोक टोक जा पहुंचने के अधिकारी बने कि उन्होंने भगवान की भक्ति के प्रचार में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। हनुमान के उपासकों की संख्या राम भक्तों से कहीं अधिक है, कारण कि उन्होंने राम की आड़े वक्त में प्राणपण से सहायता की है। वे अपने कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों को बिठाए फिरे थे। राम ने भी उन्हें अपना वरिष्ठ पांचवां भाई घोषित किया था। इन दिनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि सड़ी दुनिया को बदलने में उसके लिए कायाकल्प जैसा नया सुयोग बनाया जाए। यही है 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य। यही है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं प्रतिभा परिष्कार का महाअभियान। इसी को लोग विचार क्रांति की लाल मशाल का प्रज्वलन भी कहते हैं। इस दैवी उत्कंठा की पूर्ति में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को समग्र रूप से कृतकृत्य हुआ अनुभव करेंगे। समयदान महादान। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, इस कथन के पीछे यह मान्यता रही है कि उसे श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत्प्रयोजनों के लिए ही देने की मर्यादा का ध्यान तो रखा ही गया होगा। यदि ऐसा नहीं है एवं उसके साथ दुर्व्यसंधियां जुड़ी रहें, तो प्रतिक्रिया एवं परिस्थिति के अनुरूप वह पाप के समकक्ष है और देने तथा लेने वाले दोनों को ही बदनाम करने के साथ साथ उनके लिए अनर्थ भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दान भावना को चरितार्थ करने के साथ साथ उत्कृष्टता और विवेकशीलता की शर्त भी पूरी कर ली गई होगी, यही अपेक्षा रखी जाती है। ऐसा होने पर ही यह आशा की जाती है कि दान के साथ जुड़ा हुआ पुण्य परमार्थ सभी के लिए सब प्रकार श्रेयस्कर होगा। दान के साथ इन दिनों अनेकानेक संदेहों का समावेश हो गया है, जिनका संकेत इस पुस्तिका के आरंभिक पृष्ठों पर ही किया जा चुका है। इतने पर भी धन का इतना संचय किन्हीं विरलों के पास ही होता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकने में जितनी मात्रा दी जा सके। भामाशाह जैसे धनवान में राणा प्रताप जैसों को विपुल राशि दे सकने की सामर्थ्य थी। दानी हरिश्चंद्र कर्ण बनने के लिए पूर्व संचित संपदा के साथ साथ ऊंचे स्तर की विवेकशीलता एवं उदारता भी तो होनी चाहिए। ऐसे संयोग कदाचित ही किन्हीं विरलों को हस्तगत होते हैं, अन्यथा मूर्खों का माल मस्खरे खाते हम की उक्ति चरितार्थ होती और अपयश के साथ ही दुष्परिणाम भी उपार्जित करती है। धन भौतिक पुरुषार्थ और सुयोगों के संयोग का प्रतिफल है। इस स्थिति को प्राप्त कर सकना इन दिनों सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में पुण्य परमार्थ के लिए धन दान को गौण मानकर दृष्टि उस संपदा पर जमानी होगी जो हर किसी को सृष्टा ने उदारतापूर्वक प्रदान की है वह है समय समय की कड़ियों से जुड़कर ही जीवन श्रृंखला विनिर्मित होती है। उसका उदार उपयोग तभी बन पड़ता है जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो। अरुचिकर काम चाहे कितने ही अच्छे समझे जाते हों, उनके लिए मन में इच्छा ही नहीं होती। जिस कार्य में मन नहीं लगता वह या तो प्रारंभ ही नहीं होता, या फिर आधा अधूरा काना कुबड़ा भर रहकर बीच में ही छूट जाता है। दान परिवार में धन के उपरांत दूसरे पदार्थ समय की ही गणना होती है। वह सर्व साधारण के लिए सुलभ भी है और उसके सदुपयोग की जांच पड़ताल मोटी बुद्धि से भी करते बन पड़ती है। विचारशीलों से परामर्श करने पर उसके लिए सहज मार्गदर्शन भी मिल जाता है। स्वार्थी बहुत देर तक उसका अनुचित शोषण भी नहीं कर पाते। श्रम जनित स्वेदकनों की तुलना मणि मुक्तकों से की गई है। महामानवों के श्रेष्ठ सत्कार्य इसी आधार पर बन पड़े हैं। समयदान के साथ साथ श्रद्धा का गहरा पुट लगा रहना आवश्यक है, अन्यथा व्यस्तता जैसे अनेकों बहाने सहज अभ्यास के अनुरूप बन जाया करते हैं। महान मनीषियों की साधना समय की तपशिला पर बैठकर ही संभव हुई है। उन्होंने जो सोचा जो सृजा है उसके पीछे उनकी तन्मयता भरी समय साधना ही रही है। वैज्ञानिकों आविष्कारों ने अपना मानस और समय प्रमुखतापूर्वक निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित न किया होता तो सफलता की आशा कहां बन पड़ती। लोक सेवियों ने अपने समयदान के सहारे एक से एक बड़े कार्य संपन्न कर दिखाए हैं। धन न सही पर समय को साथ लेकर तो फरहाद जैसे साधनहीन भी अपनी साधना के बल पर 32 मील लंबी नहरें खोदकर ला सकने में सफल हो सकते हैं। भारत की पुरातन गरिमा पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके मूल में एक ही तथ्य उजागर होता है। साधु ब्राह्मणों का वानप्रस्थ पुरोहितों का वर्ग न्यूनतम निर्वाह में अपने काम चलाता रहा और शेष सारा समय परिपूर्ण लगनशीलता के सहारे लोकमंगल की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटाता रहा। उनकी सेवा साधना ने जन जन का मन जीता, इसीलिए उन्होंने उनके परामर्शों प्रतिपादनों को जीवनक्रम में उतारने में कुछ उठाना रखा। व्यक्तित्व में सन्निहित प्रतिभा इसी आधार पर प्रसुप्ति से विरत होकर जागृत कर निष्ठा में परिणति हुई और सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बन गया। यही है सतयुग में समुन्नत वातावरण बने रहने का प्रमुख कारण। अनाचारों की रोकथाम के लिए शासन का राजदंड भी काम करता है, पर सद्भाव संवर्धन के लिए धर्मतंत्र की भाव संवेदनाएं ही समर्थ हो सकती हैं। सुख शांति उसके ही अवलंबन से बन पड़ती है। उत्कर्ष अभ्युदय और विकास का आधार भी इसी के सहारे खड़ा होता है। इतिहास साक्षी है कि भारतीय परिव्राजकों ने विश्व के कोने कोने में पहुंचने की कष्टसाध्य यात्राएं संपन्न की और वहां के पिछड़ेपन को हटाने एवं उत्कर्ष का बहुमुखी सरंजाम जुटाकर परिस्थितियों में जादुई परिवर्तन कर दिखाया। देशव्यापी आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को अक्षुय बनाए रखने में इसी साधु ब्राह्मण वर्ग का ही अथक प्रयास कार्यरत रहा है। उपयोगिता और गरिमा का मूल्यांकन करने वालों ने उन्हें भूसुर देव मानवों की पंक्ति में प्रतिपादित किया है। भारतीय धर्मतंत्र का एक अनिवार्य पक्ष रहा है वानप्रस्थ सांसारिक प्रयोजनों में जीवन की आधी अवधि लगाने के उपरांत शेष आधी को लोकमंगल के लिए लगाया जाना आवश्यक माना जाता था। गृहस्थ की जिम्मेदारियां हल्की फुल्की रखी जाती थी। कोई बुद्धिमान ऐसे परिवारों का सृजन नहीं करता था जिनका भार वहन करते करते ही जिंदगी का कचूमर निकल जाए। जो गृहस्थ में प्रवेश करते थे वे भी न्यूनतम संख्या में संतान उत्पादन आरंभिक दिनों में ही पूरा कर लेते थे ताकि अधेड़ होते होते घर परिवार के बंधन से छूट सकें। स्वावलंबन और सुसंस्कारिता के लिए समुचित मार्गदर्शन ही अभिभावकों का कर्तव्य रहता था। उत्तराधिकार में धन छोड़कर मरने की बात तो कोई सोचता तक न था। कमाओ व्यक्ति मिलजुल कर असमर्थ अविकसितों का भरण पोषण कर लेते थे। हर घर पीछे एक व्यक्ति पूरे समय के लिए लोक मंगल के लिए समर्पित होता था। इसी में किसी गृहस्थ की शान समझी जाती थी। राजपूतों में से हर घर के पीछे एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता था। सिखों में से एक को गुरु कार्यों के लिए समर्पित होकर रहना पड़ता था। उसके हिस्से में आने वाली जिम्मेदारियों को घर के अन्य लोग मिलजुल कर पूरी कर लिया करते थे। यही थी वह महान परंपरा जिसके कारण भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी रही और यहाँ के नागरिक देवमानव के रूप में समस्त संसार में प्रसिद्ध हुए। इन देव मानवों की साधना ने ही इसको ज्ञान क्षेत्र में जगतगुरु, विज्ञान क्षेत्र में चक्रवर्ती, शासन और व्यवस्था क्षेत्र में स्वर्ण संपदाओं का स्वामी बनाया था। इतिहास आज भी तुमुल नाद के साथ उद्घोष करता है कि उन पुरातन परंपराओं को यदि किसी प्रकार फिर जीवंत किया जा सके तो सतयुग लौट आने की संभावना फिर सुनिश्चित हो सकती है। दुर्बुद्धि के दावानल में जलती हुई दुनिया को फिर से नए वातावरण में सांस लेने की सुखद संभावनाएं हस्तगत हो सकती हैं। इन दिनों असल की नकल बनाने में मनुष्य की चतुरता ने कमाल हासिल कर लेने जैसी प्रवीणता प्राप्त कर ली है। खिलौने वाले की दुकान पर खड़े होकर जानकारी के सभी नमूने थोड़े से पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस देवता की भी चाहे मिट्टी की मूर्तियां बिना किसी कठिनाई के खरीदी जा सकती हैं। इतने पर भी असली और नकली का अंतर लोग समझ ही लेते हैं। खिलौना गाय दूध कहाँ देती है, खिलौना हाथी की पीठ पर बैठकर लंबा सफर कहाँ किया जा सकता है, खिलौना मुर्गी अंडे कहाँ देती है। यही बात सुखी और समुन्नत संसार में सतयुगी वातावरण बनाए रखने वाले देव मानवों के संबंध में भी है। इन दिनों धर्मोपदेशक संख्या में 60 लाख के लगभग है। धर्म प्रचारक की आड़ में जिस तिस बहाने अनुदान और सम्मान बटोरने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतने धर्म सेवकों के रहते विश्व का न सही तो देश का अभ्युदय तो चरम स्तर का रहा ही होता, पर दीख इससे ठीक उल्टा पड़ता है। जिन्हें देश का, विश्व का भार उठाना चाहिए था, वह उल्टे भारभूत बनकर रह रहे हैं। यहाँ दानधर्म की विवेचना करते हुए सर्वसुलभ समयदान की चर्चा की जा रही है और इस विचारणा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जा रहा है। देखना है कि लोक मंगल के लिए समयदान की प्राचीन परंपरा को किसी प्रकार पुनर्जीवित कर सकना क्या संभव हो सकता है। उज्ज्वल भविष्य की संरचना में प्रमुख भूमिका निभा सकने में समर्थ इस महान प्रचलन को अपनाने के लिए विचारशील पीढ़ी में क्या नया उल्लास आवेश उपजाया जा सकता है। वस्तुतः सच्चे अर्थों में समयदान करते तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई से आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। ऐसे लोग अपने प्राणप्रिय लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलने के लिए आकुल व्याकुल होकर तीर की तरह सनसनाते हुए चलते हैं। प्रलोभन और अवरोध उनके मार्ग में न आते हों सो बात नहीं है, पर उस ओर उपेक्षा बरते जाने पर उसका दबाव अनुभव नहीं होता। लगता है कि यह मच्छर काटने जैसा दिनचर्या का अंग है जो ध्यान भर बटाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिससे मार्ग बदलने जैसी कुछ सोच अड़े आए। ऐसी दशा में उन अवरोधों और आकर्षणों का उनकी दृष्टि में कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है जो संकल्पहीन व्यक्तियों को बहकाने, बरगलाने, फुसलाने और रास्ता भुला देने के लिए पर्याप्त होते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कार, प्रचलन का प्रभाव, लालच का दबाव तथा कथित हितेशियों का प्रभाव मिलकर एक ही सूच सुझाते हैं कि जिस तरह भी संभव हो अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाना और उनका मनमौजी उपयोग करना ही प्रसन्नता का मार्ग है। स्वार्थ ही सर्वोपरि है, अपनी सुविधा के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके लिए दूसरों को असुविधा हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। औसत आदमी का मन इस दोहरी चाल को चलने में ही अपनी चतुरता अनुभव करता है और जब तब न्यूनाधिक सफलता भी उस दुरंगी चाल से प्राप्त कर लेता है। पर यह सब एक प्रकार का प्रहसन अभिनय भर है जो मंच पर क्रीड़ा कौतुक दिखाकर पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है। छल छिपता नहीं, वस्तुस्थिति कल नहीं तो परसों प्रकट होकर रहती है। ऐसी दशा में यह बहुरूपीयपन विचारशीलों की दृष्टि में उपहासास्पद बनकर ही रह जाता है। बच्चे ही उस छलावे को न समझ पाने के कारण कुछ देर तक तालियां बजा सकते हैं। इस अर्थ प्रधान युग में किसी को भी खरीद कर उससे कुछ भी कहलाया, कराया या लिखवाया जा सकता है, पर इस समूचे गठजोड़ में इतना दम नहीं होता कि प्रस्तुत प्रपंच को लंबे समय तक जीवित रख सके। उस खिलवाड़ से बालू के महल सजाए भले ही जाएं, पर वे कुछ ही क्षणों में गिरकर धराशायी हो जाते हैं। ऐसी विडंबनाएं आए दिन रची जाती और उजड़ती देखी जा सकती हैं। इसे कौतुक कौतूहल के अतिरिक्त और क्या कुछ कहा जाए। ऐसों का व्यक्तित्व उपहासास्पद बन जाता है और पता चलने पर निकटवर्तियों से लेकर सहयोगियों तक सभी पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। सूक्तिकार ने ठीक ही कहा है कि पाखंडी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं, जिसका बुरे दिन में भी साथ दे सकने वाला कोई साथी सहयोगी नहीं बचता। यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, नी स्वार्थी, उपयोगी और प्रेरणाप्रद कार्यों की बातें चल रही हैं। वे मात्र उन्हीं से बन पड़ती हैं जिनकी आदर्शवादिता से जुड़ी हुई लगन टीस बनकर हर घड़ी कसकती रहती है और समय ही नहीं कौशल और साधनों को भी अभीष्ट के प्रति समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव कराती है। संसार भर के इतिहास का एक ही निष्कर्ष है कि आदर्शवादी घटनाक्रम, अभियान, आंदोलन चलाने और व्यापक बनाने में मात्र वे ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने में अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। समयदानी इन्हीं को कहते हैं। उनका प्रयास न तो बीच में रुकता है, न पथभ्रष्ट होता है, न गड़बड़ाता है। श्रेयाधिकारी ऐसे ही लोग बनते हैं। महादानी इन्हीं को कहना चाहिए। छुटपुट दान की चिन्ह पूजा करते रहने वाले तो हर गली कूचे में कुछ न कुछ आडंबर पहने जहां तहां घूमते देखे जा सकते हैं। दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे। कब किस दान की महिमा अत्यधिक बड़ी चढ़ी मानी जाती है? इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि जब जिस विपत्ति का अत्यधिक प्रकोप हो तब उसके निराकरण का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ दान है। प्यास से संतृष्टों को पानी, भूख से तड़पतों को अन्न, अग्निकांड का शमन करने के लिए जल, बाढ़ की चपेट से घिरों को नाव, दुर्घटनाग्रस्तों को चिकित्सा उपचार जैसे उन साधनों की आवश्यकता पूर्ति की जाती है जिसके कारण संकटग्रस्तों को अत्यधिक त्रास सहन करना पड़ रहा हो। वर्तमान समय में आस्था संकट के रूप में घोर दुर्भिक्ष, जन जन के ऊपर प्रेत पिशाच की तरह चढ़ा हुआ है। लोग बेतरह भूल भुलैयों में भटक रहे हैं। दृष्टिकोण में ऐसी विकृति समा गई है कि उल्टा सीधा और सीधा उल्टा दिखता है। कौरवों को नवनिर्मित राजमहल में प्रवेश करते समय जल में थल और थल में जल दीख पड़ा था। इस कारण वे मतिभ्रम में पड़े, दुर्गति को प्राप्त हुए और उपहासास्पद बने। सोचा इस प्रकार जाना चाहिए कि एकता और समता की मान्यता अपनाई जाए, मिल बांट कर खाया जाए, हंसते हंसाते रहा जाए, सहयोग और सहकार की रीति नीति अपनाई जाए। वह बर्ताव दूसरों के साथ न किया जाए जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हर कोई अपनी प्रामाणिकता अक्षुण रखे, अनीति न कोई करे न सहे, न कोई अमीरी का अहंकार जताए और न किसी को अभावग्रस्त रहने के लिए बाधित रहना पड़े। चरित्र में शालीनता और व्यवहार में सज्जनता का गहरा पुट रहे। मानवीय गरिमा के उपयुक्त मर्यादाओं के परिपालन में कोई कोताही न बरते और न वर्जनाओं के उल्लंघन की उद्दंडता बरतने की छूट किसी को मिले। उच्च विचारों को मान्यता देते हुए सादा जीवन जीते हर किसी को देखा जा सके। मानवीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के परिपालन के लिए समाज व्यवस्था बने और उसका पालन करने के लिए हर किसी को सहमत अथवा बाधित किया जा सके। किंतु जो चिंतन, प्रचलन, व्यवहार एवं लक्ष्य अपनाया जा रहा है वह लगभग उल्टे स्तर का है। हर किसी को आपाधापी पड़ी है। जो जितना भी, जिस प्रकार भी बटोर सकता है उसमें कमी नहीं रहने दे रहा है। साथ ही जो उपलब्ध है उसका भूणा उपयोग करने में ही अहंकार की पूर्ति मानी जा रही है। उद्दंडता ही समर्थता का पर्यायवाचक बनने का प्रयत्न कर रही है। आदतों में घुसी पड़ी विकृतियां अशांति और उद्विग्नता को दिन दिन बढ़ावा दे रही है। असंतोष, खींच, थकान, निराशा के साथ साथ आक्रमण और प्रतिरोध का कुचक्र ऐसा चल रहा है जिसका ओर छोर कहीं दीख नहीं पड़ता। विज्ञान भी बड़ा और बुद्धिवाद भी, पर दोनों के ही दुरुपयोग से बीमारी, गरीबी, बेकारी निरंतर बढ़ रही है। प्रदूषण की विषाक्तता जीवन के लिए चुनौती बन रही है। नशेबाजी, प्रपंचों की बहुलता के प्रचलनों को देखते हुए प्रतीत होता है कि लोग धीमी गति से सामूहिक आत्महत्या की योजनाबद्ध तैयारी कर रहे हैं। इस सबका निष्कर्ष एक शब्द में बुद्धि विपर्यय कहा जा सकता है। आस्था संकट यही है। अपने समय में सबसे बड़ा अभाव और कष्ट यह है कि लोगों को मानवोचित स्तर पर सोचना और तदनुरूप क्रियाकलापों का जीवन में ढाल सकने में सफल होना कठिन जान पड़ता है। पानी ढलान की ओर से सहज बह निकलता है, पर उसे ऊंचा उठाने में असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सत्साहस के क्षेत्र में चरम सीमा की दुर्बलता छाई हुई है। भ्रष्ट चिंतन अपनाते ही दुष्ट आचरण बन पड़ने का सिलसिला तो तेजी से चल ही पड़ता है। यही सामाजिक विकृतियों की उद्गम स्थली है, जहां उभरने वाला प्रवाह अपने प्रभाव में कीचड़ ही कीचड़ भरता है। पाचन तंत्र खराब हो जाने पर बढ़ती हुई विषाक्तता असंख्यों आकार प्रकार के रोग उत्पन्न करने लगती है। ठीक इसी प्रकार विकृत चिंतन का अंधड़ उमड़ पड़ने पर आंखों में धूल भर जाती है और यथार्थता को सही रीति से देख पड़ना कठिन पड़ता है। क्रियाएं स्वतः ही नहीं बन पड़ती, उनके पीछे आकांक्षाओं, मान्यताओं एवं विचारधाराओं का गहरा पुट रहता है। शरीर मन का वाहन है, उसे वही करना पड़ता है जिसके लिए मन रूपी संचालक उसे निर्देश देता और दबाव डालता है। कठपुतली को बाजीगर के इशारे पर ही तो नाचना पड़ता है। सुधार उपचार करना हो तो एक ही उपाय अपनाना पड़ेगा कि कुविचारों के प्रभावों को मोड़ा और उसकी दिशा धारा को सदुद्देश्यों के साथ जोड़ा जाए। इतना बन पड़ने पर वह सरल हो जाएगा जो इन दिनों सर्वत्र अपेक्षित है। यहाँ चेचक की फुंसियों पर मरहम न लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पर प्रतिवेदन यही प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस रक्त विकार का भी उन्मूलन किया जाए जो चेचक से लेकर गलित कुष्ठ तक अनेकानेक विकृतियों का मूल कारण बन जाता है। नाली के ऊपर चूना छिड़क देने से काम नहीं चलता। उसमें भरी हुई सड़ी कीचड़ की परतें उठाने और पानी की तेज धार से उसे बहाने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा चूना छिड़कने से क्षणिक संतोष भर किया जा सकता है, किंतु विषाक्त कृमि कीटकों का निरंतर चल रहा उत्पादन स्थायी रूप से रोका न जा सकेगा। संसार के कोने कोने में स्थानीय परिस्थितियों और प्रचलनों के अनुरूप असंख्य प्रकार की अवांछनीयताएं अनेक रूपों में उभरती देखी जाती हैं। सोचने वाले उन सबको स्वतंत्र समस्या समझकर सामयिक एवं स्थानीय उपाय ही अपनाते हैं। इसका परिणाम आहत स्थान पर सुन्न करने वाले लेप लगा देने जैसा होता है। हाथों हाथ तो कुछ सुधार दिख पड़ता है, पर जैसे ही उस लेप का प्रभाव हल्का होता है व्यथा ज्यों को त्यों फिर उभर आती है। इस खिलवाड़ में समय नष्ट करते रहने की अपेक्षा उपयुक्त यही है कि विचार क्रांति का तूफानी सरंजाम जुटाया जाए और उसे प्रचंड बनाया जाए। प्राकृतिक सफाई तो तूफानी अंधड़ और घटाटोप वर्षा का प्रबल प्रवाह ही व्यापक रूप से संपन्न कर पाता है। यूं घर आंगन में बुहारी लगाकर सफाई की चिन्ह पूजा तो किसी प्रकार होती ही रहती है। भटकाव में पड़ने की अपेक्षा हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी समूची तन्मयता एवं तत्परता को उसी में नियोजित करना चाहिए। इसके लिए तर्क और तथ्यों पर आधारित यथार्थता का प्रबल प्रतिपादन बहुत हद तक काम दे जाता है। इन शताब्दियों में प्रजातंत्र और साम्यवाद की विचारधारा दो मनीषियों ने इस प्रकार प्रस्तुत की है कि उन्होंने संसार के दो तिहाई मस्तिष्कों को अपने प्रभाव की परिधि में जकड़ लिया। जो एक तिहाई शेष है, वे अपने निहित स्वार्थों की वकालत प्रकट करते देखे जाते हैं। विरोध उनका ऐसा उथला होता है कि जिसका खंडन किए जाने पर बगलें झांकने और खीसे निपुरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पड़ता। शालीनता की पक्षधर विचारक्रांति की दृढ़ता और यथार्थता के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उसके प्रयोग जहां कहीं जितनी सशक्तता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपना चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत किया है। यह बात अलग है कि संकीर्ण स्वार्थों का समूह उनके साथ पूर्वाग्रह की तरह जुड़ा हुआ हो और जैसा प्रभाव परिणाम हो सकता था वैसा न हुआ हो। विचार क्रांति का ही परिणाम है कि उसके एक झकझोर ने इन्हीं दिनों राजशाही, सामंतशाही, साहूकारी व्यवसाय, जातिगत ऊंच नीच दास दासी प्रथा जैसे चिरकाल से जड़ जमाए बैठे अनौचित्यों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब उनके खंडहरों पर इतिहास के विद्यार्थियों की ही नजर पड़ती है। पुरातन काल जैसा वैभव और जलजला उनका कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। कई विचार क्रांति में व्यक्तित्वों का परिमार्जन प्रमुख है। इन दिनों निजी जीवन में व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला है। इनके स्थान पर प्रतिष्ठापना यह की जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी समाजनिष्ठा अक्षुण रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए निजी लोभ मोह और अहंकार को नियंत्रित अनुबंधित करना पड़े। निरक्षीर विवेक वाली दूरदर्शिता को प्रश्रय मिले, भले ही इसके लिए कितने ही पुराने प्रचलनों को ताक पर उठाकर रखना पड़ता हो। जन जन को ऐसी रीति नीति अपनाने के लिए बाधित किया जाए जिससे मानवीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई सद्भाव संपन्न शालीनता के अनुरूप ही आचरण करते बन पड़े। सहकार, शिष्टाचार, सज्जनता के उदार समावेश का हर कार्य में भली प्रकार संपुट हो। बड़ी मछली छोटी को खाती है, यह एक उद्धत उदाहरण है। आमतौर से तो दुर्बलों अबोधों पर स्नेह सहयोग ही बरसता है। यदि यह परंपरा न रही होती तो हर मानव अपनी संतान का भक्षण कर रही होती और सृष्टि का समापन अब से बहुत पहले ही हो गया होता। इन दिनों मनुष्य की निजी आदतों से लेकर समाज, शासन, व्यवसाय आदि में अवांछनीयता के ऐसे तत्वों का असाधारण रूप से समावेश हो गया है जिन्हें पनपना नहीं चाहिए था। आवश्यकता इसी सफाई की है। इसके लिए प्रतिभाशाली हर व्यक्तित्व को अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना पड़ेगा। मनीषियों की लेखनी और वाणी को सशक्त अस्त्र शस्त्रों की भूमिका निभानी चाहिए। वक्ता की वाणी इतनी मुखर होनी चाहिए कि उसकी यथार्थता मिश्रित ओजस्विता हर सुनने वाले को ध्यान देने और अनौचित्य से विरत होने के लिए बाधित कर सके। युग गायक सरसता की ऐसी स्वर लहरी निर्धारित कर सकता है जिससे उसके ऊपर लगा कामुकता भड़काने का कलंक धुल सके। धनिकों के लिए प्रायश्चित का ठीक यही समय है। व्यक्तिगत संपदा को शासकों से लेकर ईर्ष्यालुओं तक कोई भी सहन नहीं करेगा। अगले दिनों की उथल पुथल में यह बिजली सबसे पहले संचित संपदा पर ही गिरेगी, क्योंकि अनेकानेक समस्याओं, संकटों और विडंबनाओं का प्रमुख कारण लोभ लिप्सा को ही माना जाता रहा है। अच्छा हो जिसके पास अनावश्यक संग्रह है वे उसे युग धर्म की पुकार को सुनने समझने के उपरांत उसी हेतु विसर्जित कर दें। जनमानस को प्रभावित करने वाले और भी अनेक तंत्र हैं। इसमें प्रेस ने अपना मजबूत स्थान बना लिया है। अभिनय भी बल कौशल का प्रतीक प्रतिनिधि बनकर रह रहा है। जिनमें नेतृत्व कर सकने की प्रतिभा हो वे उसे अपनी विशेषता सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र लोलुपता में खर्च न करें, वरन लोकमानस के साथ गुंथकर ऐसा प्रबल प्रयत्न करें कि बुद्ध, गांधी, शंकर, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा की तरह सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पूरी कर सकें। इस संबंध में किसी को भी अपनी क्षमता कम करके नहीं आंकनी चाहिए। टिटहरी का समुद्र सुखाने का संकल्प अगस्त्य की सहायता से पूरा होकर रहा था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो जैसे विचारक किसी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक नहीं थे। कबीर और रैदास जैसों ने यथार्थता के प्रतिपादन में इतना साहस दिखाया कि जमाने के सामने अकेले ही अड़ जाने की उनकी प्रतिज्ञा अंत तक निभी रही। हजारी किसान ने नितांत अनपढ़ होते हुए अपने संपर्क क्षेत्र में हजार अमर उद्यान लगाने में सफलता पाई थी। धुन के धनी इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि साधनों और सहयोगियों की परवाह न करते हुए भी वे अपनी नाव चलाते और उसमें बिठाकर अनेकों को पार करते हैं। युग धर्म ने जिस एक आधार को प्रमुख घोषित किया है वह है विचार क्रांति, जनमानस का परिष्कार, प्रचलनों में विवेक सम्मत निर्धारणों का समावेश। यह सब क्रियापरक कम, भावना प्रधान अधिक हैं। इसके लिए विचारणा से लेकर भाव संवेदनाओं की मानसिकता को झकझोरने से काम चल जाएगा। दृष्टिकोण में बदलाव आने पर प्रचलनों में उलट पुलट होकर रहेगा। जिस दिशा में प्रतिभाएं समूचे मनोयोग के साथ बढ़ेंगी उस पर पीछे चलने वाले अनुयायियों की कमी रहने वाली है ही नहीं। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहन लिया जाता है सभी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। दर्पण में अपना ही चेहरा दिखता है, गुंबज में अपनी ही आवाज गूंजती है, छाया अपने साथ साथ ही चलती है। मनुष्य का विकसित व्यक्तित्व जब आदर्शवादी मार्ग पर चलने का संकल्प करता है तो उसकी शक्ति हजारों गुनी हो जाती है। सहयोगियों और साधनों की भी कमी नहीं रहती। आवश्यकता केवल एक है, अपनी मनस्वी सत्ता के जागरण की और उसकी उत्कृष्टता के साथ जुड़ते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर धकेल देने की। प्रभाव उत्पादक समर्थता। आम शिकायत एक ही सुनी जाती है कि हम लोगों को सिद्धांतवादी परामर्श देते हैं, वे स्वीकारते नहीं, इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता और जो कहा गया है उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। असफलता की यह शिकायत पूरी तरह गलत नहीं है। यदि गलत रही होती तो जितने धर्मोपदेशक आज हैं, पहले दिनों में भी उससे कम नहीं थे, उन्होंने जमाने को बदल दिया होता। कभी देश में प्रधान सात ऋषि थे, वह संख्या तो नगण्य ही थी, पर उनके निजी व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे कि कहते हैं कि सातों ने सात द्वीपों में समूचे संसार में धर्म धारणा की ऐसी हवा चलाई जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। देश में साधु ब्राह्मण सीमित संख्या में थे, पर वे स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए देश के कोने कोने में पहुंचते थे और लोगों को अनगढ़पन से छुड़ाकर कर्मठता और सद्भावना से अनुप्राणित करते थे। जब प्राचीन काल में धर्म प्रचार के जादुई चमत्कार देखने को मिलते रहे हैं तो आज उस प्रक्रिया के विपरीत शिकायत करनी पड़े, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्यमय कारण होना चाहिए। अन्यथा जो बादल पहले पानी बरसाते थे अब क्यों धूली बरसाएं और क्यों हर किसी को शिकायत का मौका दें? यहाँ समझने योग्य बात एक ही है कि वरिष्ठ व्यक्तित्व ही सामान्य जनों को प्रभावित करते हैं। घटिया लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि हर किसी को अपने कथन की प्रामाणिकता का विश्वास दिला सकें और उत्कृष्टता के पक्षधर परामर्शों को अपनाने के लिए किसी को सहमत कर सकें। वक्ता ऊंचे मंच पर बैठा करते हैं और श्रवणकर्ता उनसे तनिक नीचे बैठे होने पर कही गई बात को आसानी से सुन लेते हैं। यदि वक्ता नीचे गड्ढे में बैठा हो तो ऊपर बैठे श्रवणकर्ताओं तक बात पहुंचाना कठिन होता है। प्रसंग जब आदर्शों को अपनाने का होता है तो वक्ता को उस उच्चता की कसौटी पर हर दृष्टि से कसे जाने के उपरांत सही सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा कथन प्रतिपादन हवा में उड़कर रह जाएगा। नौसिखियों को कला कौशल सिखाने वाला अपने विषय का निष्णात होना चाहिए। स्कूली अध्यापक भी छात्रों की तुलना में अधिक पढ़े होते हैं। संगीत सिखाने वाले की योग्यता भी असंदिग्ध होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच तो इतने से भी काम चल जाता है, किंतु जहां तक आदर्शवादी सुधारवादी और जीवन में परिवर्तन लाने वाले धर्म प्रसंगों का सवाल है, वहां यह बात अनिवार्य हो जाती है कि उपदेष्टा जो कुछ दूसरों से कराना चाहे उसे स्वयं भी दृढ़तापूर्वक आचरण में उतारे। सुधार के प्रसंग में लोग वक्तृता सुनने से कहीं अधिक दिलचस्पी इस बात में लेते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे उपदेशक ने अपने निजी जीवन में किस हद तक अपनाया। देश, धर्म, समाज और संस्कृति का अभ्युदय इसी पर निर्भर है कि इनसे संबंधित व्यक्ति संपर्क में आने वालों को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से उस विशिष्टता से प्रभावित करे जो आडंबर बनाने से नहीं वरन भावना, श्रद्धा और जीवनचर्या के साथ जुड़ी हुई निष्ठा पर अवलंबित है। बुरे लोग यदि दबंग होते हैं तो साधारण स्तर के अनेक लोगों को अपने दुर्व्यसनों में सहयोगी बनाने के लिए घसीट लेते हैं। नशेबाजों की मंडलियां बन जाती हैं, चोर लफंगे भी गिरोह बना लेते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि सूत्र संचालकों की कथनी और करनी में एकता होती है, भले ही वह बुरे स्तर की ही क्यों न हो। बिजली के दो तार मिलने पर ही करंट चालू होता है। कथनी और करनी दोनों के संयोग से ही उपदेश में शक्ति उभरती है, अन्यथा लोग यही मानते हैं कि वह कथन निभाने योग्य नहीं है। वक्ता जब इतने जोर शोर से अन्यान्यों में बदलाव लेने की बात करता है और उसका महात्म्य फलितार्थ भी उच्च कोटि का बताता है तो उसे अपने आचरण में क्यों नहीं लाता? इस प्रश्न के उत्तर में दो ही बातें उभर कर आती हैं। एक तो यह कि कथन व्यवहारिक नहीं है, सुधार संभव नहीं है, आम लोग जो रीति घटाव नीति अपनाए हुए हैं वही ठीक है। यदि सुधारवादी कथन ठीक है और उसका मार्गदर्शन करने वाला उपदेष्टा उस स्वयं करने से कतराता है तो यह समझा जा सकता है कि कहने वाला ठग है, दूसरों से अपना सम्मान कराना चाहता है और स्वयं घटियापन अपनाकर उन लाभों को उठाना चाहता है जिन्हें स्वार्थपरायण लोग अपने ढंग से अपनाते रहे हैं। यही वह संदेह है जिनके कारण आदर्शवाद के उपदेशकों पर से जन साधारण की निष्ठा उठती जाती है। विचारक्रांति वकीलों जैसी दलाली देने से संभव नहीं हो सकती, उससे तो अधिक से अधिक यह हो सकता है कि भ्रांतियों का निवारण बन पड़े, किंतु प्रचलन मात्र इतने से ही नहीं चल पड़ते हैं। उनके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थपरता, अहमन्यता, दूसरों के प्रति उपेक्षा जैसी दुष्ट मान्यताएं भी छद्म रूप से काम कर रही होती है। यदि उन पर अंकुश लगाते न बन पड़े तो तथाकथित सुधारक भी मुखौटे बदलते रहने वाले बहुरूपीय मात्र बनकर रह जाते हैं। देखा जाता है कि बेटी का विवाह सामने होने पर सभी लोग दहेज विरोधी बनते हैं, पर जब बेटे के विवाह की बारी आती तो प्रकट या गुप्त रूप से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। यही कारण है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं, कि उद्घोषकर्ता ही समय आने पर मुखौटे बदल लेते हैं और यह अति महत्वपूर्ण आंदोलन मात्र प्रोपेगेंडा का उपहासास्पद विषय बनकर रह जाता है। धर्मोपदेश देने वाले सच्चे अर्थों में उसका पालन करें तो कोई कारण नहीं कि अनुकरणीयकर्ताओं की कमी रहे। नानक कबीर जैसे संतों की प्रामाणिकता और प्रखरता भावनाशीलों को असाधारण रूप से आंदोलित करती और असंख्यों को ऐसे अनुयायी बनाती रही है जो कष्ट कठिनाइयों से निपटने की कसौटियों पर भी लगातार खरे उतरते रहे हैं। प्रस्तुत कठिनाइयों से निपटने का लगभग सही स्तर का निर्धारण यह है कि लोकमानस को भ्रांतियों से उबारा और परिष्कार कर विवेकशीलता अपनाने के लिए तर्क, तथ्य, अनुभव और प्रमाण के आधार पर सहमत किया जाए। यही विचार क्रांति है। इसका दूसरा चरण है क्रियात्मक परिवर्तन। इसे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी कह सकते हैं। प्रवाह को रोकने और उल्टे को उलटने के लिए साहस भरा पुरुषार्थ चाहिए। प्रतिभा परिष्कार इसी का नाम है। यही दो चरण बढ़ाते हुए महाक्रांति का लक्ष्य पूरा करना संभव है। सत्युगी प्रचलन के लिए वातावरण बनाना इसी आधार पर बन पड़ेगा। निर्णायक निर्धारण यह है कि इसके लिए जीवट के धनी प्राणवान प्रतिभाओं का भाव भरा समयदान चाहिए। समयदान को सर्वोत्कृष्ट दान इसलिए माना गया है कि उसमें ईश्वर प्रदत्त समय एवं शरीरगत पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष रूप में श्रम और अंतःकरण की भाव संवेदना का गहरा पुट रहने पर ही यह प्रक्रिया सशक्त रूप में बन पड़ती है। प्रभावी समयदान वही है जिसमें समय, श्रम और संकल्प का त्रिविध समन्वय हुआ है। ऐसा समयदान की युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया संपन्न कर सकने में समर्थ हो सकता है। प्रामाणिकता और प्रखरता ही सर्वत्र अभीष्ट। आज की परिस्थितियों पर सामयिक विचार मंथन का निष्कर्ष एक ही है कि हम सब भ्रांतियों के युग में रह रहे हैं और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा परिपालन में भटक गए हैं। सुधार इन दोनों का ही बन पड़े तो समझना चाहिए कि उपाय का अवलंबन मिल गया जो युग समस्याओं का समाधान कर सकने में पूरी तरह समर्थ है। इस उपाय को क्रियान्वित करके कौन दिखाए, इस संदर्भ में आशा की सुई उन वरिष्ठ प्रतिभाओं पर जाकर रुकती है जो समयदान के रूप में अपने परम पुरुषार्थ का प्रस्तुतीकरण कर सकें। यह समयदान आलसियों प्रमादियों जैसा नहीं, वरन उसके साथ कठोर श्रम और भाव संवेदनाओं का गहरा पुट घुला मिला रहना चाहिए। यह किनसे बन पड़ेगा? उसका उत्तर महाकाल के शब्दों में ही मिल जाता है, जो अपने को तपे सोना जैसा खरा सिद्ध कर सके। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की तीनों जांच पड़तालों में भली प्रकार उत्तीर्ण हो सके। यह कार्य अति सरल भी है और अति कठिन भी। सरल उनके लिए जो जीवन को एक बहुमूल्य दैवीय अनुकंपा मानते हैं और उनके श्रेष्ठतम उपयोग की बात सोचते हैं। कठिन उनके लिए जिन पर वासना, तृष्णा और अहंता की तिकड़ी पूरे जोर शोर के साथ हावी है। भव बंधनों में बांधने वाली तीन जंजीरें प्रख्यात हैं। उनका उल्लेख कहीं लोभ, मोह, अहंकार के रूप में किया गया है, कहीं इनकी गणना तृष्णा, वासना और अहंता के नाम से कराई गई है। दोनों ही प्रतिपादन एक ही तथ्य को अलग अलग शब्दों में व्यक्त करते हैं। प्रथम बंधन लोभ तृष्णा के प्रभाव से व्यक्ति में धन बटोरने की ललक चढ़ी रहती है। इसके साथ वह अनाचार तक करता है और उसके प्रभाव से खींचते चले आने वाले दुर्व्यसनों का शिकार बनता है। इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों ही स्तर के चित्र विचित्र अनर्थ खड़े होते हैं। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किसी के लिए कठिन नहीं है। वह कुछ ही घंटों के परिश्रम से जुट जाता है और शेष समय का सदुपयोग पुण्य परमार्थ जैसे दिव्य प्रयोजनों में ही हो सकता है। संग्रहित संपत्ति को बेचकर बैंक में डाल देने से भी उसका ब्याज पाने की कितने ही लोग व्यवस्था बना लेते हैं ताकि घर खर्च आसानी से चल सके। पूर्व काल में घर के अन्य कमाऊ लोग परिवार का एक सदस्य परमार्थ के लिए समर्पित करके अपनी गौरव भरी परंपरा चलाते रहते थे। सतयुग के ब्राह्मण परिवार में से एक सदस्य परिव्राजक की तरह भ्रमणशील सेवा साधना में निरत रहता था। आज भी चिंतन को थोड़ा झकझोरा जा सके तो वैसी ही व्यवस्था फिर नए सिरे से बन सकती है। दूसरा भव बंधन है जिसका तात्पर्य है स्त्री बच्चों का आश्रित परिवार इतना बड़ा और भारी बना लेना जिसका भार निरंतर जुटे रहने पर ही किसी प्रकार उठाया जाना संभव हो सके। ऐसे लोग मनोरंजन के रूप में कुछ परमार्थ कर सकते हैं। पति पत्नी तभी एक और एक मिलाकर 11 बनते हैं जब उच्च उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के सहयोगी बने। संतान के दायित्व नहीं के बराबर बनाए रखें, अन्यथा उनका निर्वाह और अमीर बनने का मंसूबा जीवन तत्व का सारा रस निचोड़ लेता है। वासना का प्रतिफल ही यह विषफल है। संतानरहित विवाहों में तो परमार्थ के लिए थोड़ी गुंजाइश भी रहती है, पर यदि वह आकर्षण बढ़ता जाता है तो श्रम का नियोजन और मनोयोग उसी प्रयोजन में खप जाता है। यदि परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी भर बनाने तक का लक्ष्य सीमित रखा जाए, उस पर बड़प्पन थोपना अनिवार्य न समझा जाए, तो विवाह बंधन नहीं बनता और न वह भार बनकर सिर पर लदता है। जो भी हो, जिस प्रकार लोकसेवियों के लिए निर्वाह व्यय में कटौती करना आवश्यक है, वहाँ यह भी उचित है कि परिवार के उद्यान में रहकर दायित्वों के निर्वाह की शिक्षा तो प्राप्त करें, पर उसे हथकड़ी की तरह इतना कठोर न बना लें कि उसके अतिरिक्त और कुछ सोचना या करना बन ही न पड़े। प्राचीन काल में लोकसेवियों